मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 5 फरवरी 2016 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं रंजन कुमार सिंह, आप आरा बिहार से हैं, अमित मिश्रा, आप दिल्ली से हैं, और छगन क्षीर सागर, आप लाखनी भंडारा महाराष्ट्र से हैं। तो रंजन, अमित और छगन, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, हालांकि अभी सितंबर को आने में काफी दिन हैं, लेकिन एक एक दिन करके जब बीतते चले जाएंगे तो वह वक्त भी आएगा, जिस तरीके से आज मैं फरवरी के अपने बैच के स्टूडेंट्स से मिलने के लिए उत्सुक हूं, ठीक उसी तरीके से मैं सितंबर के बैच से भी मिलने के लिए उत्सुक रहूंगा। इसलिए जरा भी अपने मन में यह मलाल न रखें कि फरवरी में ही मैं आ गया होता या सितंबर तो अभी बहुत दूर है। दोस्तों, ये केवल हमारे दिमाग का खेल है, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं निर्णय लेने में हमसे थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, थोड़ी बहुत भूल हो जाती है, लेकिन ये जो हमारी जिंदगी बनी है ये चूक और भूल दोनों से ही मिलकर के बनी है। इसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, इसलिए अफसोस की कोई बात नहीं है। सितंबर भी आएगा, इसके बाद भी वक्त आएगा, और वक्त इसी तरीके से आता ही रहेगा, इसी में हम गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे और आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो मित्रों, आप सभी का आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो की शुरुआत मुझे एक दुखद सूचना से करनी पड़ रही है, और वह सूचना यह है कि एक स्टूडेंट है दीपक, जो फरवरी अभी की क्लास में आने वाले थे, फरवरी के बैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पिता का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ये वास्तव में कल के मेल से यह जानकर बहुत अधिक दुख हुआ। तो दीपक, यह जीवन का एक बड़ा विचित्र सा क्रम है, जीवन के अंत का एक दुखद पक्ष है, क्योंकि जब फल पक जाता है और पकने के बाद गिरता है या टूट जाता है अपने आप, तो काफी कुछ संतोष करने का आधार होता है, लेकिन यदि इस तरीके से कोई असमय मृत्यु हुई हो और उसका कारण दुर्घटनाएं रही हो, तो डेफिनेटली खुद को समझा पाने में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर होती है, लेकिन समझाना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु को अपना कारण चाहिए और कारण इतने लाखों करोड़ों में होते हैं कि उसका निर्धारण करना मुश्किल होता है। तो दीपक, फिलहाल केवल हम सब यही कर सकते हैं कि मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से उस मृत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबको, परिवार के सदस्यों को, परिजनों को, वो यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। घाव ताजा है, डेफिनेटली अभी जितना दर्द होगा असहनीय सा मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन भगवान ने हमें यह भी शक्ति दी है, प्रकृति ने हमें यह भी ताकत दी है कि धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ती है और यह दुख जो जिंदगी भर साथ ही रहता है, लेकिन सहन करने की शक्ति उसे लगभग लगभग भुला देने जैसी भी कर देती है, और जीवन मित्रों इसी तरीके से चलता रहता है। तो दीपक, आपको खासकर चूंकि आप एकेडमी में आने वाले थे, तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि एकेडमी में आने के लिए आपने अपनी मानसिक तैयारी की होगी, मानसिक रूप से आप अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होंगे, लंबे समय से आप ऑडियो सुन भी रहे हैं, तो ये आपका एक अतिरिक्त दायित्व है कि आप ऐसे कठिन समय में अपनी मजबूती का परिचय दें, खुद मजबूत बने रहें, ठीक उसी तरह से जैसा कि आपने लिखा कि आपके दादा अपनी मजबूती का परिचय दे रहे हैं, आप मजबूती का परिचय दें, अपने दादा को देखें, उनसे प्रेरणा लें और उनके साथ मिलकर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनको दिलासा दिलाएं, उनको सांत्वना प्रदान करें, उनको समझाने की कोशिश करें, और खासकर आप अपनी बहन को संभालें, वो ज्यादा भावुक हैं, उम्र कम होगी, स्वाभाविक है, जुड़ाव होता है, तकलीफ होती ही है, इसको किसी तरीके से कुछ बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि तकलीफ को बयान नहीं किया जा सकता तो विश्वास कीजिए कि हमारे अंदर जो सहन करने की शक्ति है उसको भी बयान नहीं किया जा सकता। तो अभी एक ऐसा वक्त आया है, परीक्षा की घड़ी है, जब आप सबको अपने सहन करने की शक्ति के सामने इस संकट को बौना सिद्ध करना है। ये बौना है नहीं, लेकिन अपनी सहन करने की शक्ति को एक विराट रूप देना होगा, जैसा कि कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, और इसे एक छोटा स्वरूप प्रदान करना होगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस बड़े बहुत विकराल संकट से अपने आप को उबार लेंगे। फिर से हम एक बार सभी मिलकर के दीपक आपके पिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अपने चरण में स्थान दे। मित्रों, अब एक छोटी सूचना है जो मैं जनरली हर फ्राइडे को दिया करता हूं। आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो नहीं आता है, लेकिन सैटरडे को जो रूटीन की चीजें हैं वो आपको उसी तरीके से मिलेंगी जैसे कि पहले मिलती हैं। प्रेस क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर में आपको अवेलेबल रहेगा, साथ ही साथ सैटरडे को आपको कुरुक्षेत्र और योजना हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में जो पत्रिका छपती है उसके एक एक आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही जो फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको जो स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया जाता है वह भी उन्हें उपलब्ध रहेगा। तो ये थोड़ी सी सूचनाएं आप सबके लिए थी। मित्रों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर, और इस पर मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी जो बात करने जा रहा हूं, जो थोड़ा सा वक्त मिला है, जो मुझे इजाजत दे रहा है, वह यह है कि कल हम लोग एक फिल्म देख करके आए, हालांकि उसका नाम थोड़ा सा बड़ा विचित्र सा है और मेरी समझ से शायद आप समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सी फिल्म देख करके आए। मैं और मेरी पत्नी एक फिल्म देख करके आए जिसका नाम ही है साला खड़ूस। अब पता नहीं देखने वालों को आप क्या कहेंगे और जो भी कहना चाहें आप हम लोगों को कह सकते हैं। साला खड़ूस फिल्म देख करके आए, और सच पूछिए तो नाम तो इसका आकर्षक नहीं था और देखने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि ये फिल्म राजकुमार राज हिरानी ने बनाई है तो आकर्षण भी था, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, उनमें एक सोशल मैसेज होता है और वो खासकर फिल्मों के क्राफ्ट को जानते भी हैं। उसी से प्रेरित होकर के हम लोग ये फिल्म देखने गए। फिल्म कैसी थी, क्या थी, अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उसमें मित्रों कुछ बहुत ऐसी खूबसूरत चीजें थी, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी जो मुझे लगता है कि हमारे नौजवान साथियों के लिए और खासकर मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के लिए काफी काम की हो सकती हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों ने ये फिल्म देखी है और कितने आगे जाकर के देखेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सब फिल्म देखें ही, लेकिन अगर देखते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सब कुछ नुकसान में रहेंगे, बशर्ते मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बशर्ते ये कि फिल्म को आप अपनी शर्त पर न देखें, फिल्म को फिल्म की शर्त पर देखें। अगर आपने अपने मापदंडों को, अपने आदर्शों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी रुचियों को फिल्म पर आरोपित किया तो आपको निराशा मिलेगी, और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने का कोई भी किसी भी कला को आत्मसात करने का सही तरीका भी नहीं है। लेकिन अगर आप फिल्म को फिल्म के तरीके से देखेंगे, जो उसका प्लॉट है, जो उसका विषय है, तब आपको बहुत मजा आएगा, जैसा कि मुझे बहुत 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 मजा आया। मित्रों, ये एक बॉक्सर के ऊपर है कि इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके बॉक्सिंग के एक कोच हैं जो माधवन है, एक्सीलेंट एक्ट्रेस, नो डाउट उसके जैसा एक्टर, सॉरी एक्टर कहना चाहिए, एक्ट्रेस कह गया मैं, एक्सीलेंट एक्टर, गजब का एक्टर। कहां तो वो मनु वेट्स तनु रिटर्न में बिल्कुल एक बहुत ही लुंज पुंज सा शांत व्यक्ति है, और कहां इस फिल्म में बिल्कुल उसके अपोजिट इतने डोमिनेटिंग, इतना कह लीजिए कि जोशीला, इस वही तो खड़ूस है व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आए, गजब की एक्टिंग। मैं सलाम करता हूं माधवन की एक्टिंग को। दोस्तों, केवल एक ये है कि वो बहुत ही डेडिकेटेड है और बॉक्सर, बॉक्सिंग में वो बहुत ही ओपन हार्टेड भी है, कुछ भी बोल देता है तो जो संगठन है वो उसके खिलाफ रहेगा ही, ऐसे ओपन सत्य जो इस तरह से कड़वा सत्य बोलते हैं उनको उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, तो उसका ट्रांसफर चेन्नई कर दिया जाता है। वो कोच है और चेन्नई में जाकर के वो मछली बेचने वाली एक लड़की को देखता है और सोचता है कि नहीं, मुझे इसे बॉक्सर बनाना है। उसके अंदर वो आग देखता है और उसे फिर बॉक्सर बनाने की कोशिश करता है, और बॉक्सर बनाने की कोशिश में उसे दो तरफा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पहला तो ये कि उस लड़की की तरफ से ही वो इन्हें बिल्कुल घास नहीं डालती। घास नहीं डालती का मतलब है सीखने के मामले में, हालांकि उसने कह रखा है कि तुम रोज आओ, दो दो घंटे दो, मैं तुमको डेली 500 रुपए दूंगा। अपनी पॉकेट से वो पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उसमें वो समझ ही नहीं है। दूसरी तरफ जो संगठन है, जो खासकर इसके खिलाफ है, उसमें जो हेड हैं वो इसको पसंद नहीं करते, तो वो अलग तरीके से बाधा खड़ी करते हैं। और इन दोनों तरह की बाधाओं से कैसे ये जो कोच है ये जूझता है, ये इसकी कहानी है कुल मिलाकर के। मित्रों, आप जो इसमें दो तीन चीजें जो मैसेज ले सकते हैं, जो आप पाएंगे और आपको पाना चाहिए, वो मैं आपके ध्यान में खासकर लाना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप देखेंगे मित्रों की जो सफलता होती है, सामान्य सफलता तो सामान्य तरीके से मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट सफलता होती है उसके लिए सच में लोगों को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कुर्बानियां का मतलब ये नहीं कि अपना गला चढ़ाना पड़ता है या बलि का बकरा बनाना पड़ता, किसी बकरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। कुर्बानियां का मतलब है दोस्तों कि अपनी कितनी इच्छाओं को कुचलना पड़ता है, अपने को कितने जबरदस्त डिसिप्लिन में डालना पड़ता है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कितनी ज्यादा अपने ही इच्छाओं के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर के कोई बड़ी चीज मिलती है। और सच पूछे तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि तभी जाकर के बड़ी चीज नहीं मिलती, बल्कि वो बड़ी चीज इसलिए है क्योंकि वो इस तरीके से मिलती है, अदरवाइज वो बड़ी चीज नहीं होती। आप लोग जो अपनी जिंदगी में थोड़ा भी बड़ा काम करने की सोचते हैं, हटकर काम करने की सोचते हैं, इस मंत्र को स्वीकार कीजिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी इच्छाओं से बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये भी करूंगा, नहीं मैं ये भी करूंगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन वो बड़ी चीज भी चाहिए, ये आपको वहां मिलेगा। मेहनत का जो कमाल होता है, एक खिलाड़ी दोस्तों, सच में मैं सारे खिलाड़ियों को प्रणाम करता हूं, कैसी वो जिंदगी जीते हैं, कितने संकटों में रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और बदले में उनको मिलता क्या है, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, उसमें दिखाया है कि एक समय ऐसा आता है कि जो बॉक्सर है, जो विमेन बॉक्सर है, विमेन बॉक्सर है, वो इमोशनल ग्रिप में आ जाती है कोच के प्रति, और उस समय कोच किस तरीके से उसे डांटता है कि तुम सबको क्या हो जाता है कि जब जिंदगी में एकदम ऊंचाई पर पहुंचने के करीब होते हो, ऐसा मौका आता है जब तुम अपना शौर्य दिखा सकते हो, सफलता को हासिल कर सकते हो, उसी समय इन फालतू के चक्करों में पड़ जाते हो। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त वाक्य है और वो सीन भी हिला देने वाला है। नो डाउट माधवन ने जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की है उसको तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैंने इस मुद्दे पर आप लोगों से बात की थी। प्लीज, ये जो भावनात्मक दौर है, याद रखिए कि ये बहुत नेचुरल है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये दुनिया में सबके साथ होता है। जो इस तूफान को संभाल लेते हैं, इस तूफान से अपनी किश्तियों को निकाल लेते हैं, वो इस सागर को पार करके किसी बहुत अच्छे महल में पहुंच जाते हैं, अदरवाइज बस वहीं वो गोता लगाते रहते हैं। दोस्तों, प्लीज कंट्रोल कीजिए इस भावनात्मकता पर, कंट्रोल कीजिए इस सुनामी पर, कंट्रोल कीजिए इस दावानल पर। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है और बहुत ही सामान्य चीज है। अगर इन छोटे से तूफान से आप हिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जिंदगी में तो सच में दूसरे तरह के पता नहीं कितने यथार्थवादी तूफान आएंगे। आप उनको कैसे संभालेंगे? क्या वहां तिनके की तरह आप बह जाना पसंद करेंगे उनमें? दूसरा बहुत जबरदस्त मैसेज है। तीसरा, दोस्तों, आप सब मेरा इस जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस सुन रहे हैं, इस फिल्म में आपको वो तीनों एनर्जी का इस्तेमाल बड़े खूबसूरत तरीके से होता हुआ दिखाई देगा, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी का तो इतना खूबसूरत इस्तेमाल इस पूरी फिल्म में हुआ है कि मैं देख करके बिल्कुल दंग था, अद्भुत। चौथा और आखिरी मैसेज फ्रेंड्स, और वो ये है कि इस फिल्म में आप देखेंगे कि हर के जीवन में कोई न कोई अच्छा अवसर आता ही है, हर एक के जीवन में आता है। आपके भी आया होगा, नहीं आया होगा तो आगे आएगा। ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको यूं ही छोड़ देगा, अनाथ छोड़ दिया उसने, नॉट एट ऑल। ये समाज अनाथ छोड़ सकता है, परिवार की दृष्टि से हम दुर्घटनाओं में घिरकर अनाथ हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति हमें अनाथ नहीं छोड़ती, वो हमें अवसर उपलब्ध कराती है। सभी के सामने जीवन के बहुत बेहतरीन अवसर आते हैं, हम हैं कि उन अवसरों को या तो पहचान नहीं पाते, या पहचान लेते हैं तो अपनी कमजोरियों के कारण उसको खो देते हैं। अगर ट्रेन स्टेशन पर आकर के रुकी है और आप अगर उस ट्रेन में चढ़ेंगे ही नहीं तो वो ट्रेन क्या कर लेगी, जो चढ़े हुए हैं उन्हें पहुंचा देगी और जो वहीं खड़े हैं वो वहीं खड़े रहेंगे, लौट जाएंगे, स्टेशन पर भी नहीं रहेंगे। मित्रों, अवसर सभी के जीवन में आते हैं, पता नहीं अपने ईगो की वजह से, ज्यादातर तो मैंने देखा है नौजवानों में चूंकि ये बहुत ज्यादा होता है तो अपने ईगो में बहुत जीते हैं, बट नेचुरल है कि उसकी वजह से वो खत्म कर देते हैं जिसको वो अपने साहस का और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि वो बहुत बड़े कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, स्पष्टता का नाम देंगे, सत्य बोलने का नाम देंगे, बड़े बड़े आदर्शवादी शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बेसिकली जीवन ये नहीं है, ये आपका ईगो बोल रहा है, ये आपका व्यक्तित्व नहीं बोल रहा है, ये जीवन का सत्य नहीं बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। हाँ, बाद में जब वो 40 साल से अधिक की उम्र में दौर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहे थे, और तब तक देर हो चुकी होती है। मित्रों, अवसरों को पहचानिए। अवसर अलग से कोई कपड़े पहन करके नहीं आता, अवसर कोई घोषणा करके भी नहीं आता कि मां मुलाहिजा होशियार और फलाने फलाने पधार रहे हैं, अवसर तो आता है, रो बहता रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें से मेरे लिए कौन सा है। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, अपने लिए दुकान में घुस जाते हैं, जो आपको लेना होता है आप उसी दुकान में जाते हैं, अवसर को आपको पहचानना पड़ेगा मित्रों, और जो इन अवसरों को पहचान करके पकड़ लेते हैं उनके शिष्य बन जाते हैं, वो फिर आखिरी में एक समय ऐसा आता है जब उस बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं। मित्रों, ये जो मैंने आपको 3-4 संदेश बताए हैं, इस नजरिए से जब आप फिल्म देखेंगे तो देखेंगे कि यह फिल्म आपको कितनी चमकदार मालूम पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि ढां ढूंज फिल्म में है और आपने 2 घंटे 10 मिनट गुजारे और आप बाहर आ जाएंगे। तो मित्रों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर कल के AIR न्यूज में थी वो ये कि सरकार एक विधेयक लाने वाली है, अभी जब बजट सेशन शुरू होगा, आपने न्यूज में सुना, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, जब बजट सेशन शुरू होगा तो हम उनके कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक आने वाला है और ये आपके सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूं कि जो भी स्टूडेंट थोड़े से लंबे समय से इस ऑडियो को सुन रहे होंगे उनमें इतनी कैपेसिटी तो आ गई होगी कि वो मेरी इस बात को पकड़ लेंगे कि मैं किसकी बात कहने जा रहा हूं। मित्रों, आगामी संसद के अधिवेशन में एक विधेयक लाया जाएगा जिसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि पंचायतों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, 50%, अभी तक यह 33% था, अब इसको 50% कर दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि 50% तक तो सीट वैसे भी संवैधानिक रूप में नहीं, न्यायालय का जो निर्णय है उसके तहत भी 50% तो आरक्षण दिया ही जा सकता है, तो उसको 50% तक पहुंचा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह विधेयक लाया जाएगा, GST पारित नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यह महिला पंचायतों में 50% जो आरक्षण का विधेयक है यह पारित होगा कि नहीं होगा? इसको पॉलिटिकल एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए, संवैधानिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि राज्यसभा में तो BJP का बहुमत नहीं है और वहां फिर राज्यसभा में जाकर के यह विधेयक अटक जाएगा तो फिर पारित कैसे होगा, और आप सही भी हैं क्योंकि बहुत से विधेयक इसीलिए अटके हुए हैं, GST उसका सबसे खूबसूरत नमूना है। लेकिन मैं इसलिए मैंने कहा कि इसको पॉलिटिकल दृष्टि से सोचिए, जीवन में जिस दिन आपके पास व्यावहारिक दृष्टि पैदा हो गई मित्रों, उस दिन आप किसी भी क्षेत्र में जाइए आप कमाल कर जाएंगे। व्यावहारिक दृष्टि का मतलब मत समझिएगा कि सर कह रहे हैं कि भैया जहां करप्शन करना है वहां करप्शन कर लो और वो करना, ये व्यावहारिक की बात नहीं है, ये तो अनैतिकवादी दृष्टि हो गई। मैं व्यवहारिक दृष्टि, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको चीजों के बारे में, और प्रैक्टिकल होना कहीं अनैतिक होना नहीं होता, अधार्मिक होना नहीं होता है, अवैधानिक होना नहीं होता है, गैर कानूनी होना नहीं होता, उसको कोई नहीं कहता प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है सही तरीका अपनाइए और सही तरीका के आधार पर वो तरीका अपनाइए जो वहां जरूरी हो, व्यावहारिक हो, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल होना। इसमें क्या होगा, इसमें बट नेचुरल ही ये होगा कि चूंकि महिलाओं का मामला है, आपको मालूम है कि संसद और विधानसभा में भी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात लंबे समय से की जा रही है लेकिन अभी तक उस पर सभी पार्टियां एकमत नहीं हो पा रही हैं। लेकिन ये जो मामला होगा, आप देखेंगे, अगर मैं बहुत पॉलिटिकल एनालिसिस मेरी गलत नहीं होगी, कि ये बहुत आराम से ये विधेयक पारित हो जाएगा। थोड़ी बहुत बहस होंगी और इस पर रोक लगाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो भी पार्टी सीधे सीधे इसके खिलाफ आएगी, और अगर विधेयक पारित नहीं हुआ और विधेयक पारित न करने के लिए जो पार्टी जिम्मेदार होगी उसको पूरे देश की महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, और फिर चुनाव के दौरान वो पार्टी उनसे वोट कैसे मांगेगी। पहली बात तो ये विधेयक पारित हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस के पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, मैं जब ये बात कहता हूं तो मेंस की बात कह रहा हूं। आप देखेंगे कि 2013 में तो महिलाओं से जुड़ा हुआ सिर्फ एक क्वेश्चन था, 2014 में ये फर्स्ट पेपर में आता है महिलाओं से जुड़े हुए इश्यूज, और आप जब सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें मेंशन भी किया हुआ है, अलग से मेंशन किया हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन थे और वो बढ़ करके 2015 तक 3 या 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूछे ही जाएंगे, और 3 क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब लगभग 12 से 15% मार्क्स के क्वेश्चन वीमेन इश्यू पर होते हैं, जो बेसिकली वीमेन एम्पावरमेंट पर होते हैं। तो पहला तो आपको यह कंटेंट मिल गया। इसके अतिरिक्त आपने ध्यान दिया होगा, कल मैंने आप लोग को एक प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की थी, वो एडिटोरियल फॉर्मेट में था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और उसमें एक हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, केवल उसकी बात है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर पाया था, अब वो इससे जुड़ गया है। और आज मैं आपको एक प्रेस क्लिपिंग्स दैनिक जागरण का भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है और हिंदी में है, आपको ज्यादा काम अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। एक्चुअल में 2005 में जो एक हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, मतलब हिंदुओं में जो उत्तराधिकारी कानून, उसमें एक संशोधन हुआ था और उस संशोधन में एक धारा जोड़ी गई थी, धारा 6। ये आपको ना, ये चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं धारा वगैरह का जिक्र कर रहा हूं कि कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सन 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट, और ये उसमें धारा 6 जोड़ी गई, और धारा 6 जोड़ने के आधार पर ये व्यवस्था की गई कि जो पैतृक संपत्ति होती है, पिता की जो संपत्ति होती है, उसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा, महिलाओं का भी अधिकार होगा। इससे पहले पैतृक संपत्ति में महिलाओं का को अधिकार नहीं होता था, पति की संपत्ति में होता था, और उस समय इसको लेकर के बहुत जबरदस्त विवाद भी छिड़ा और इसको लेकर के बहुत मामले भी शुरू होने लगे। तो ये धारा जोड़ी गई थी, लेकिन उसमें ये बात छूट गई थी कि फिर मुखिया कौन होगा। मान लीजिए कि जो फैमिली का जो हेड है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली के हेड की डेथ हो गई, तो फिर मुखिया कौन होगा। तो वो एक परंपरा से चली आ रही थी कि बेटा होगा, बेटा ही हेड होगा, जो सबसे जो बड़ा बेटा होगा वो उस फिर मुखिया का हेड होगा, मतलब मुखिया होगा, सॉरी, परिवार का हेड होगा। अब जो हाई कोर्ट ने कहा, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही क्लियर कट कहा है कि नहीं, अगर मुखिया नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी है, तो बेटा या बेटी जो भी बड़ा होगा, क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़े बेटे के उत्तराधिकारी का नियम परंपरागत तौर पर चला आ रहा है, आपको मालूम है, इसीलिए भगवान राम को राज्याभिषेक भी किया जा रहा था, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे थे। तो अब तक वो सबसे बड़े बेटे की बात अभी तक चली आ रही थी, अब जो कहा गया कि नहीं, सबसे बड़ा तो है लेकिन वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। अगर बेटी सबसे बड़ी है तो वह भी जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें उसकी बात चलेगी। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है, एक तो मैंने भी आपको पंचायतों का बताया जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, और दूसरा यह दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत जबरदस्त उठाया गया कदम है। चूंकि ये दोनों बहुत लेटेस्ट हैं, तो जब भी आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसकी चर्चा, चाहे आप निबंध लिखें, चाहे आप किसी क्वेश्चंस का आंसर दें, उसमें ये बात जरूर आनी चाहिए। मित्रों, अब जो 2-3 जो छोटी छोटी खबरें थी वो बहुत ही सामान्य तरीके की खबरें हैं, वो लेकिन मैं आपके ध्यान में ले आता हूं, आपको मालूम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं सिविल सर्विस की, मेरा नो डाउट कि जो टारगेट ग्रुप है वो सिविल सर्विस की तैयारी का ग्रुप है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं वो दूसरे एग्जामिनेशंस में भी बैठते हैं, तो इसीलिए मैं उधर भी थोड़ा लेकर के चलता हूं और इशारा करता हूं, लेकिन जो लेवल होता है ऑलमोस्ट वो सिविल सर्विस का ही होता है। और मेरा ये भी मानना है कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करता है वो फिर दूसरे जो एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी फिर वो ऑटोमेटिक होने भी लगती है। तो दोस्तों इस तरीके की जो दो तीन खबरें थी जो सिविल सर्विस के हिस्से के लेवल पर तो नहीं है लेकिन दूसरे एग्जामिनेशंस में आपकी मदद कर सकती हैं। एक तो आपको आपने सुना न्यूज में कि जो 12वें दक्षिण एशियाई खेल हैं वो गुवाहाटी में होने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हमारे उसका उद्घाटन करेंगे। 8 देश के लगभग 4000 खिलाड़ी उसमें भाग ले रहे हैं और सबसे एक अच्छी बात यह है कि इसमें भारत की ज्यादातर भारत फर्स्ट रैंक पर ही रहता है, सबसे ज्यादा मेडल्स भारत को ही मिलते हैं और बट नेचुरल है कि भारत सबसे बड़ा देश भी है। बाकी तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी राष्ट्र हैं वो बहुत छोटे 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 देश हैं तो भारत के सामने ठहर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये एक खबर, छोटी खबर थी। दूसरी जो तीसरी जो खबर थी दोस्तों वो डिजिटल लिटरेसी को लेकर के थी। आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि अब कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हो रही हैं सभी जगह पर। इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही हैं, पढ़ाई में भी वही आ रहा है। तो डिजिटल लिटरेसी के तहत ये प्लान किया गया है कि अभी 15% का हमारा लक्ष्य था कि 15% लिटरेसी की जो हमारी रीच होगी एजुकेशन की वो डिजिटल के थ्रू होगी, तो 3 साल में उसको 50% करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। तो एक डेटा है जो आपके जहन में होना चाहिए। और आखिरी जो खबर थी दोस्तों वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू, ये एक बहुत बड़ी घटना है जो भारत में हो रही है। मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो फ्लीट है, जो खासकर जल सेना में जो जल सेना का रिव्यू कह लीजिए एक तरह से, वो भारत में हो रहा है और भारत के विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो ये विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आकाशवाणी समाचार में आज इतनी ही बातें हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं आता हूं कुछ दूसरे इश्यूज पर जो बेसिकली खासकर आपके न्यूज़पेपर्स से जुड़े हुए हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर पढ़ी होगी और मैं समझता हूं कि शायद सभी न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो BCCI है वो जो है लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर अमल करे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि लोढ़ा कमेटी आपको मालूम है न्यायमूर्ति लोढ़ा के नेतृत्व में बनी थी, अध्यक्षता में बनी थी और उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी थी, कुछ उसमें पेश की थी, अपनी सिफारिशें दी थी। उस सिफारिश में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये जो खेल संगठन है, दो बड़ी बात थी कि उसमें और जो उसकी सिलेक्शन कमेटी होती है, जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके जितने मेंबर्स हैं उस खिलाड़ी ही होने चाहिए, ये बात उन्होंने रही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी मित्रों, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा कि अगर आप साला खड़ूस फिल्म देखेंगे तो साला खड़ूस फिल्म में मैंने आपको बताया कि दो तरह की बाधाएं, एक तो उस लड़की की तरफ से है, उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है वो नहीं समझ पाती है चीजों को तो वो अपनी तरफ से बाधाएं खड़ी कर रही है, लेकिन दूसरा संगठन की तरफ से जो फेडरेशन होते हैं, तो जो फेडरेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको आप देखेंगे और आपका मन जो है ना विस्तृष्ण से भर जाएगा, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी आएगा कि क्या राजनीति चल रही है। देखिए राजनीति का मतलब एक तो सेंस है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन राजनीति का मतलब एक दूसरे अर्थ में भी होता है और वो राजनीति को कह लीजिए आप षड्यंत्र चलते हैं, किसी को गिराना किसी को उठाना ये सब चलता है। तो उसको भी आजकल ना हम लोग कुछ राजनीति शब्द इस्तेमाल होने लगा, हालांकि कहना नहीं चाहिए कि षड्यंत्र को हम राजनीति कहें। तो उन्होंने कहा कि यहां से इसमें खिलाड़ी ही होने चाहिए क्योंकि वही उस चीज को समझ सकते हैं। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और भारत जिस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे खेलों में बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, खेल की एक संस्कृति भी विकसित हो रही है, खेलों में कैरियर भी दिखाई देने लगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत धीरे धीरे बेहतर करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली अगर इस लोढ़ा समिति की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को सभी फेडरेशन में लागू किया गया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में खेलों का जो स्तर है वो बहुत बेहतर हो सकता है। और आपको ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मेंस में खेलों पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो मित्रों इस कमेटी की जो 10 बड़ी सिफारिशें थी इसको लेकर के दैनिक जागरण का फ्रंट पेज एक आर्ट न्यूज आइटम छपा था, यह भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों जैसा कि मैंने कहा था कि मनरेगा के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और 10 वर्ष पूरे होने पर मनरेगा की आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट है, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें आपको कुछ तथ्य मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसमें यह है कि अभी 2 सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किया गया है परमेश्वरन अय्यर जी को जो न्यू ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, और एक दिल्ली गवर्नमेंट में किए गए, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इंचार्ज हैं वो सर्वज्ञ श्रीवास्तव, उनको सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया है। ये बेसिकली आईएएस से नहीं है, ये बाहर से है, बेसिकली ये प्रोफेशनल हैं। तो भारत के ब्यूरोक्रेसी को लेकर के हमेशा क्वेश्चंस आप देखेंगे कि मेंस में पूछा जाता है, तो आपके दिमाग में ये बात अब होनी चाहिए कि बाहर से जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी ऊंचे ऊंचे पदों पर ला करके बिठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका नजरिया बहुत अलग होता है चीजों को देखने का। और सच बात तो है कि काम करने का उनका कल्चर बड़ा डिफरेंट होता है, एक तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होता है काम करने का, और दूसरा बड़ा प्रैक्टिकल या मैनेजेरियल कल्चर होता है काम कराने का। तो ये मैनेजेरियल कल्चर को लेकर के चलते हैं, जो हमारा खासकर जो बहुत ही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो बात आती है इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, लेकिन तथ्य के रूप में आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की प्रेस क्लिपिंग्स एडिटोरियल कमेंट है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो आर्टिकल है देवेंद्र शर्मा जी का, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, और बीमा फसल बीमा योजना भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है उसकी समीक्षा है, रिव्यू है, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके अंडरलाइन भी कर दिया है। इसे आप जरूर पढ़ेंगे और इस आर्टिकल को अपने पास रखेंगे भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिविल सर्विस के लिए है। तो मित्रों, और भी दूसरी क्लिपिंग्स हैं, आप देख लेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो एक मित्र का मैं नाम ले रहा हूं जो अभी फरवरी के बैच में आ रहे हैं, उनका नाम है जिग्नेश, जो अहमदाबाद से आ रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट उनके एरिया से आ रहे हों उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिग्नेश का मोबाइल नंबर है 8469482524। तो मित्रों, अब मैं आता हूं जो मेल लिखे गए हैं उन पर। मित्रों, बहुत से मेरे पास मेल आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। उसमें एक विकल्प का मेल है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो जिन्हें मैं अच्छा मेल कहता हूं उनको डिस्प्ले किया जाए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि अच्छे मेल क्या होते हैं। पहले भी कई स्टूडेंट्स ने इस तरह की मांग की है, तो आज मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आप सब मेल लिखते हैं वो आपके निजता है, वो आपकी प्राइवेसी है, जो भी बात आप कहना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि बिना हम उसके आपकी अनुमति के, जिसके भी मेल को बेस्ट चुना जा रहा है उसकी अनुमति के, मैं नहीं चाहता कि उस मेल को हम पब्लिकली डिस्प्ले करें, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो मेल मैं अब आपको बता देता हूं, तो फिर इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है। देखिए, हल बहुत सरल है, मेल कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको देखने के बाद ही आपको पता लगे कि अच्छे मेल क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आज मेरे पास 15 मेल आए, लेकिन सभी सामान्य स्तर के हैं, किंतु उसमें जो अच्छा मेल होगा मैं उसको बेस्ट घोषित कर दूंगा। कल भी 15 मेल आए हैं, लेकिन सब अच्छे स्तर के हैं, उसमें 8-10 अच्छे हैं, उसमें मैं अच्छे एक मेल को छांटूंगा। और पता लगा इस तरह से 15 दिन के मैंने 15 अच्छे अच्छे मेल छांट लिए। अब ये 15 अच्छे मेल हैं, बेस्ट हैं, लेकिन इसमें भी कोई बेस्ट मुझे निकालना होगा तो फिर एक निकलेगा, है ना। इसीलिए ये मान करके चलिए कि कोई मेल ऐसा नहीं होता है ईमेल जिसको आप कहें कि ये अपने आप में कंप्लीट है ना, क्योंकि यही तो कंपटीशन है। लेकिन कुछ विशेषताएं होती हैं किसी भी मेल की। आप मेल अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपने अपने ओपिनियन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है, उसमें कंटेंट कितने हैं, मतलब तथ्य कितने हैं, कैसे तथ्य हैं, उसकी भाषा कैसी है, वर्ड्स आपने कैसे इस्तेमाल किए हैं, आपके पूरे मेल की संरचना कैसी है, बुनावट कैसी है, मतलब ढांचा कैसा है, आप अपनी बातों को कितने स्पष्ट तरीके से कह पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही बात को आप बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के उस मेल का एक इंपैक्ट पैदा कर देती हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, क्या फील होता है। जब अच्छा लगता है तो आप उसे अच्छे मेल में शामिल कर लेते हैं, जब सामान्य लगता है तो उसको आप अच्छे में शामिल नहीं करते, लेकिन वो अपने आप में अच्छा होता होगा। लेकिन कोई चूंकि दूसरा मेल बहुत अच्छा हो गया है तो ये अच्छा मेल होने के बावजूद वो बेस्ट में शामिल नहीं हो पाता। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी मेल को डिस्प्ले किए जाने की जरूरत है। एक अच्छे मेल के जो थोड़े से लक्षण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो विकल्प, मुझे लगता है कि मेरी ये बात तुम्हें संतुष्ट कर सकेगा। और मित्रों, एक और मेल है सुधांशु अग्रवाल का विदिशा से। उन्होंने लिखा है कि उनके जो परिवार के फैमिली के 15 मेंबर्स 15 सदस्य वो इस डेली ऑडियो को सुनते हैं, मैं मान सकता हूं कि उनको जो फर्स्ट जो पार्ट है लाइफ मैनेजमेंट वाला वो उनको बहुत पसंद आता होगा। तो सुधांशु इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परिवार के आपके सभी 15 सदस्यों को मैं नमन करता हूं कि वो इसको इतनी तरजीह दे रहे हैं। और मित्रों सच पूछे तो इस तरह की अब बहुत सी खबरें आने लगी हैं कि इसके हिस्से को इंस्टीट्यूशन में भी कुछ सुनाया जा रहा है, कुछ कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को इस शुरू वाले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। फैमिली में तो ये चीजें सुनी ही जा रही हैं। जब यहां बैच क्लासेज लगती हैं तो बहुत से स्टूडेंट आकर के बताते हैं कि हमारी दादी सुनती हैं, हमारे परिवार के लोग सुनते हैं, हमारी बहन सुनती है। तो इस तरह के बहुत सी चीजें आती हैं। तो इसलिए कभी कभी जब बात होती है कि इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को क्या स्क्रैप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और सीधे सीधे एनालिसिस पर आ जाए, तो मेरे सामने इतने द्वंद्व खड़े होते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसीलिए कुल मिलाकर के अंतिम निर्णय यही होता है कि नहीं, इसको चलते रहने दिया जाए। और सच पूछे तो इसी तरह के ईमेल इस बात के लिए मुझे उत्साहित करते हैं या निर्णय लेने में मदद करते हैं कि इसे चलते ही रहने देना चाहिए। तो सुधांशु बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों और कुछ दोस्तों के मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसमें है गौरव शर्मा इंदौर से, राम बोल यादव हैं, धर्मेंद्र शर्मा है, विपुल श्रीवास्तव है BHU वाराणसी से, और प्रियंका लिखा नागपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आज का जो बेस्ट मेल है, हालांकि वो दुखद खबर से भरा हुआ मेल था जो मैंने शुरू में चर्चा की, वो दीपक के मेल को मैं बेस्ट मेल आज घोषित करना चाहूंगा। तो दीपक, इस दुखद घटना के बीच में भी चलिए एक बात है जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। तो मित्रों इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त करने की मैं अब इजाजत चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।